देखिए बात यह है कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये एक लफ्ज़ से निकला है, उस लफ्ज़ का असल है कम्यून। कम्यून आपने सुना होगा लफ्ज़, और ये कम्युनिज्म भी उससे निकला है, कम्यून, जिसका मतलब है कि लोगों को इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। तो कम्युनिकेशन का मतलब एक्चुअली इकट्ठा होने से ये लफ्ज़ निकला है, कम्युनिकेशन का ये मतलब है। जब हम इकट्ठा करते हैं किसी चीज़ को तो एक्चुअली उसको शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन में भी हम शेयर, कम्यून का मतलब भी टू शेयर है। और आपको देना, कम्युनिज्म का भी यही पूरा सिस्टम था कि सारे वसाइल को शेयर किया जाए। तो हमारे जहन में कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैं अपनी बात दूसरे को कैसे बता दूँ, उसको मैं कैसे ये बात समझा दूँ, उसको मैं कैसे कायल कर दूँ, कैसे मैं उसको चुप करा दूँ, कैसे मैं उसकी दलील को रद्द कर दूं, कैसे मैं उसको साबित कर दूं कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, कैसे मैं उसको बता दूं कि तुम गलत कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। तो हमारे ख्याल में अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो बड़ा अच्छा पब्लिक स्पीकर है, जिसको लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, जो अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल लेता है, जो मुहावरे बीच में मजाक कर लेता है, विट कर लेता है, अगले को चुप करा देता है, तो वो अच्छा कम्युनिकेटर है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब आप कम्युनिकेशन का पूरा लिटरेचर पढ़ते हैं और इसको खुद भी एक प्रैक्टिकली देखते हैं, तो कम्युनिकेशन का इन सारी चीज़ों से कतई कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत ही थोड़ा ताल्लुक है। कम्युनिकेशन का मतलब दूसरे को अपनी बात बताने और समझाने से ज़्यादा दूसरे की बात को समझना है। जब हम दूसरे की बात को समझने की पोजीशन में होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन का एक लिंक डेवलप हो गया। ये पहले, सबसे पहले अपने माइंडसेट में चेंज करना चाहिए। दो बंदे जब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ जाए। लिहाजा अच्छा कम्युनिकेटर अगर हूं तो उसका आउटकम ये होगा कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, तो इसका मतलब है मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूं, मुझे आपकी बात को मैं समझने के काबिल हो गया हूं। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि फिर मैं अपनी बात आपको समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। पहली बात तो ये रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि सिर्फ हम ही कम्युनिकेट नहीं करते, दुनिया के जितने और ज़ीरू हैं सब कम्युनिकेट करते हैं। इवन दरख्त भी कम्युनिकेट करते हैं अपने किसी उसमें, और यानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और जानवर तो कम्युनिकेट करते ही हैं, कभी आप देखें कैसे मुर्गी अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, और बिल्ली जो है अपने स्पाउस के साथ और अपने इन सब लोगों के साथ कम्युनिकेट, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ, और कभी इंसानों के साथ भी कम्युनिकेट कर रही होती है। लेकिन इंसान के पास कम्युनिकेशन के लिए एक टूल है जो कि बाकी जानवरों के पास टूल नहीं है। जानवरों के पास जो टूल है वो है वॉइस, बाकी और चीज़ें भी हैं लेकिन वॉइस। लेकिन इंसानों के पास वॉइस के बाद एक दूसरा बड़ा स्ट्रांग टूल है, यूज़ ऑफ वॉइस टू कन्वर्ट इनटू अ लैंग्वेज, जबान, लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत बड़ा टूल। अच्छा, हम सब ये समझते हैं कि शायद ये टूल इंसान को इसलिए दिया गया है कि वो उसके ज़रिए से बेहतर कम्युनिकेट करे, लेकिन आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि ये टूल मोस्ट ऑफ द टाइम अपने माफिज ज़मीर को बयान करने से ज़्यादा माफिज ज़मीर को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल की वजह से ये नहीं है कि आदमी इस काबिल हो गया है कि वो जो दिल में है वो दूसरे को बताने पर कादिर हो जाए, बल्कि ये हो गया है कि उसके अंदर ये एबिलिटी आ गई है कि जो उसके दिल में है उसको छुपा सके। जिस तरीके से आप देखिए, एक बिल्ली जो है अगर उसको गुस्सा आएगा तो उसके पास कोई लफ्ज़ नहीं है जिससे ये कह सके कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वैसे नहीं कह सकती। इसलिए कि उसके जितने भी उसके पास वसाइल हैं उसके ज़रिए वो अपने गुस्से का ही इजहार करेगी। और अगर वो आपसे प्यार करती है तो वो अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके अब इसका इजहार कर देगी कि वो आप उसको अच्छे लगते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन इंसान के पास एक वसीला मौजूद है जिसके ज़रिए से दिल में इंतहाई गैज, इस इंतहाई गुस्सा, इंतहाई नफरत के बावजूद वो ये कह सकता है कि आपसे ज़्यादा अजीज़ तो मुझे दुनिया में और कोई नहीं है, ऐसा कह सकता है। और इस वक्त जब उसको अपना बेटा जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, उसके बावजूद उसको ये कह सकता है कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा जो है ना तुम्हारे ज़बान पे कोयला रख दूंगा अगर तुमने ऐसा किया, हालांकि वो दिल में बहुत मोहब्बत कर रहा होता है। तो जो उसके दिल में उसके ऑपोजिट कह सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ में आ जाए कि हम अपनी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लैंग्वेज की फैकल्टी हमें होने का मतलब ये था कि हम अपने माफी ज़मीर को सही बयान कर सकें, लेकिन लैंग्वेज के सही ना इस्तेमाल करके हम इसके ज़रिए शौरी तौर पर या गैर शौरी तौर पर अपने माफी ज़मीर को अपोजिट एक्चुअली बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त फिलोसॉफिकल बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि किस तरीके से, जो मैंने आपका था एम जो कम्युनिकेशन का है वो ये है कि हम दूसरे की बात को समझ सकें और हम किसी कॉमन नतीजे पर पहुंच सकें और अपनी बात दूसरों को समझा सकें। इस सिलसिले में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमें टूल दिया गया है वो ज़बान है, लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के इस्तेमाल के सिलसिले में गाइडलाइन ये नहीं है कि लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल की जाए। गाइडलाइन ये है कि लैंग्वेज कहां ना इस्तेमाल की जाए, ये है गाइडलाइन। लिहाजा जो सबसे अहम टूल कम्युनिकेशन का है वो एक्चुअली बोलना नहीं है बल्कि वो सुनना है। लिसनिंग इज द प्राइम टूल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, अब मैं आई होप कि मैं आप सब लोग मेरे साथ हैं और बात को समझ रहे हैं कि जब भी हम एक अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और जो शख्स अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहता है उसके अंदर बोलने से ज़्यादा सुनने की स्किल होनी चाहिए। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि बोलने की स्किल हासिल करना निस्बतन आसान है, सुनने की स्किल हासिल करना निस्बतन बहुत मुश्किल है। क्योंकि सुनने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो सिर्फ ये नहीं है, चुप कर जाना नहीं है, सिर्फ चुप कर जाना नहीं है, सुनने के लिए बुनियादी शर्त अंदर से साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों बातों में बड़ी फ़र्क है। ना बोलना और चुप हो जाना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। वो इसी तरह से मेरा एक शेर है कि सांस लेता हुआ हर शख्स नहीं है जिंदा, जागने वाले को बेदार ना समझा जाए। तो जो आदमी बोल नहीं रहा ना, तो ये ना समझा जाए कि वो चुप है। जो बोल नहीं रहा, हो सकता है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा शोर उसके अंदर हो रहा हो। जब हम ये कहते हैं ना कि सुनने के लिए साइलेंट होना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने चुप होना है, उसका मतलब है कि उसने अंदर से तैयार होना है। बिल्कुल उसके अंदर के अपने ख्यालात बंद होने बहुत जरूरी हैं। देखिए ना, आप और मैं सामने बैठे हैं, फर्ज करें आपके दिमाग से एक इलेक्ट्रिक एक चीज सिग्नल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ऐसे ही होता है ना कम्युनिकेशन के दौरान। और अगर मेरे दिमाग में अपना शोर हो रहा होगा तो वो सिग्नल आ ही नहीं सकेंगे। तो जो आदमी भी अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता है ना, वो आज से ये प्रैक्टिस करे कि वो साइलेंट होना सीखे। जब दूसरा बात कर रहा है, बिल्कुल यकसू होके चुप होके उसको सुने, और सुने समझने की नीयत से उसको सुने। कहते हैं जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ना, वो कभी भी बात को शुरू नहीं करते, अलबत्ता वो बात को खत्म करते हैं। शुरू कोई और करता है, खत्म वो करते हैं। इसलिए कि अच्छा कम्युनिकेटर सबसे पहले अगले का पूरा डाटा ले लेता है, अगले से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता है, पूरी तरीके से मामलात को समझ लेता है। इसके लिए साइलेंट होना जरूरी है। मैं दोबारा से इस एल्गोरिदम को, यानी इस तरतीब को अर्ज करता हूं। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब समझना है, अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब समझाना नहीं है सिर्फ। नंबर दो, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए मेन टूल बोलना नहीं है, मेन टूल सुनना है। और हम सुनना सबसे मुश्किल काम है, और एक्टिवली साइलेंट होने के लिए, एक होता है ना साइलेंट होना, एक होता है एक्टिवली साइलेंट होना। साइलेंट होने का मतलब यह है कि आप आवाज मुंह से नहीं निकाल रहे, चुप हैं, लेकिन एक्टिवली साइलेंट होने का मतलब है कि ना सिर्फ आप मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे, बल्कि आप रिसेप्टिव हैं और अगले की बात को समझने, आप अंदर आने दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप जेन्युइनली खामोश हैं। अब अगला, बड़ी जरा थोड़ी तवज्जो से सुनिएगा, हम अक्सर खामोश नहीं रह सकते, साइलेंट नहीं रह सकते। आप कभी नोट कीजिएगा, जब दो लोगों के दरमियान नॉर्मल नहीं, हॉट गुफ्तगू हो रही हो, लड़ाई या झगड़े की गुफ्तगू हो रही हो, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के टेस्ट तो उसी वक्त होगा ना कि जब आप उस बंदे से गुफ्तगू करेंगे जिसके साथ आपकी कुछ ताल्लुकात स्ट्रेन हैं, और आप कुछ बातों में आपका जो है नज़रिया और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जब इस तरह की कोई भी गुफ्तगू हो रही होती है, तो आप देखिए कि वो गुफ्तगू कभी भी डायलॉग नहीं होती। वो गुफ्तगू हमेशा, हमें लग रहा होता है कि दो बंदे चीख चीख के बातें कर रहे हैं, मगर वो डायलॉग नहीं होता। वो इसलिए कि उनमें से कोई भी आदमी चुप नहीं होता। चुप का मतलब है अंदर से, एक आदमी जब बोल रहा है, दूसरा आदमी सिर्फ इंतजार कर रहा होता है कि जब इसकी गुफ्तगू में एक वक्फा आए तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूं जहां मैंने पहले खत्म की थी। इसका मतलब यह है कि जब भी हमें वाकई कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करने की जरूरत होती है, इस्तेमाल करने की, तो हम उस वक्त साइलेंट नहीं होते, हम अंदर से बोल रहे होते हैं। चूंकि हम बोल रहे होते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर अगले बंदे की बात की सिर्फ दलील सोच रहे होते हैं, कि उसकी बात का मैं जवाब क्या दूं, हम उस बात को समझ नहीं रहे होते, राइट। इसके लिए अच्छा, अब अगला मैंने बहुत गौर किया इस बात पर कि हम चुप क्यों नहीं होते। तो मैंने काफ़ी गौर किया, कुछ लिटरेचर भी सर्च की, कुछ मैंने लेक्चर्स भी लोगों के सुने जो कम्युनिकेशन स्किल्स के माहिर थे। तो मुझे ये बात समझ में आई कि इंसानों के रवैये दो तरह के होते हैं, और ये मैंने किसी और कंटेक्स्ट में बात की भी है। वो कुछ लोगों के रवैया होता है जिसे हम समझाने के लिए कहते हैं अर्निंग रवैया, और कुछ लोगों का होता है लर्निंग रवैया। ये दो रवैये हैं। वो तमाम लोग जिनका अर्निंग रवैया होता है ना, वो तमाम चीज़ों में से कोई ना कोई फ़ायदा, चाहे वो फिजिकल फ़ायदा हो, चाहे वो इमोशनल फ़ायदा हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल फ़ायदा हो, वो फ़ायदा तलाश करने की कोशिश करते हैं। और जिनका लर्निंग रवैया होता है वो हर चीज़ में से सीखने की कोशिश करते हैं, और वो हर वक्त ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से मेरी ग्रोथ हो, कैसे मुझे नई चीज़ पता लगे। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो लोग जिनका अर्निंग रवैया होता है, वो सिर्फ अर्निंग रवैये वाले हमेशा प्रोटेक्टिव फेज के अंदर होते हैं। वो हमेशा अपनी ईगो को, अपनी बात को, अपनी इज्जत को, अपनी बेइज्जती को, अपनी पैसों को, अपनी चीज़ों को, इन चीज़ों को बचाने के फिक्र में होते हैं। लिहाजा वो खामोश नहीं रह सकते, अंदर से चुप नहीं रह सकते, क्योंकि चुप रहने के लिए लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। लिहाजा वो बंदा जिसका रवैया लर्निंग हो, जो इस गुफ्तगू से भी सीखना चाह रहा हो, फर्ज करें अपने बेटे को भी किसी बात पर उसकी सरजनिश कर रहा है या कर रही है, तो उस सारे एटीट्यूड में भी अगर उसका लर्निंग रवैया होगा तो वो इस गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उसके बेटे के हर दफा नंबर क्यों कम आते हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर है। अगर उसकी स्पाउस के साथ लड़ाई होगी तो वो ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जब मैं घर में आता हूं तो ये रुस के बैठ जाती है एक तरफ। मैं इसको समझने की कोशिश तो करूं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जिसका अर्निंग रवैया होगा वो सरजनिश के पोजीशन में होगा, वो डांटने की पोजीशन में होगा, वो नक्स निकालने की पोजीशन में होगा, वो ये देखेगा कि मैं गलती कौन सी इसमें से निकालूं, वो इस पोजीशन के अंदर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोबारा से मैं बताऊं, अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है शेयर करना। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो की पॉइंट है वो समझना नहीं है, समझाना नहीं है, समझना है। समझने के लिए जो चीज चाहिए वो एक्चुअली बोलना नहीं है बल्कि सुनना है, और सुनना तब मुमकिन होता है जब हमारा रवैया लर्निंग रवैया। अगर हमारा रवैया, हम किसी भी एनकाउंटर में, किसी भी गुफ्तगू के अंदर इसलिए पड़े हों कि मैं इसमें से कुछ सीखूंगा, मुझे कुछ समझ में आएगी, इस मामले के बारे में मुझे पता होगा, तो फिर हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग और ज़बरदस्त होगी। और आगे मैं जाके आपको बताता हूँ कि कुछ टेक्निक्स, जैसे आपने कही थी, कुछ टेक्निक्स भी बताता हूँ। फिर एंड में मैं आपको बताऊँगा कि कब हम ये कह सकते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, किस बात को हम कहेंगे कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, इस सिलसिले में, इस आखिरी बात से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे लिसनिंग के लिए हमें साइलेंट होना पड़ता है, और साइलेंट होने के लिए हमें हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा, इसके लिए दो तीन बड़े की पॉइंट्स हैं। एक बात तो यह है कि हम आर्गुमेंटेटिव ना हो, यह अपने ऊपर फर्ज ना बना लें कि इसकी दलील को मैंने जवाब देना है। जरूरी नहीं होता कि गुफ्तगू के अंदर तमाम बातों में दलील देकर उसको झूठा साबित किया जाए और यह साबित किया जाए कि तुम गलत हो और मैं सही। एक तो यानी आर्गुमेंटेटिव होना, यह बात मैंने पहले भी एक दफा अर्ज की थी कि गुफ्तगू के दौरान अगर आपने आर्गुमेंट जीत ली है तो इसका मतलब है आपने रिलेशन लूज कर दिया है। विनिंग एन आर्गुमेंट मीन लूजिंग अ रिलेशनशिप। बहुत दफा हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, हम उसको बता, लेकिन उसको आर्गुमेंटेटिव तरीके से बताने का मतलब यह होता है कि हमने अगले के साथ अपने रिलेशन को ब्रेक कर दिया, एक बात। दूसरा, हमें कम्युनिकेशन के दौरान कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल का मतलब यह है पहले से ही दूसरे बंदे के बारे में फैसला ना किया हो। जैसे फर्ज करें एक स्पाउस के साथ आपकी मुजाकरात हो रहे हैं किसी बात के ऊपर, पहले ही आपने फैसला किया हुआ है कि यह तो जिद्दी है। आपने अपने बेटे के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो पहले ही आपने फैसला किया हुआ है कि इसका तो पढ़ने में दिल ही नहीं लगता। आपने अपने कोलीग्स के साथ फैसला किया हो तो पहले ही फैसला कर लिया है कि यह तो मेरे खिलाफ है। जजमेंटल नहीं होना एक चीज, आर्गुमेंटेटिव नहीं होना और एक जजमेंटल नहीं होना। अगर हम आर्गुमेंटेटिव होंगे और जजमेंटल होंगे तो तो हो सकता है आप अगले बंदे को चुप करा दें अपनी चर्ब जबानी की वजह से, या अपने नॉलेज के ज्यादा होने की वजह से, या अपनी आवाज के ताकत की वजह से, ऊंचा बोलने की वजह से, या आपकी अथॉरिटेटिव एक पर्सनैलिटी की वजह से अगले को चुप करा दें। लेकिन एक तो वो आपका कायल नहीं होगा, दूसरा आपका रिलेशनशिप उसके साथ बिल्कुल तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये बातें हो गई कि कैसे लर्निंग एटीट्यूड होता है। अब थोड़ी सी बातें कुछ स्किल्स, फिक्रों के स्किल्स। अच्छा, एक तो बात यह है कि हम सब की जो कम्युनिकेशन के दौरान सिर्फ फिक्रे से ज़्यादा जो है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत मैटर करती है। काश ये हमारा लाइव सेशन होता तो मैं आपको ना कुछ पोस्चर्स बताता कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी से गुफ्तगू करते हुए पीछे टेक लगा कर और ऐसे करके बैठे हुए हैं ऐसे करके, तो ये इंप्रेशन ये देता है कि आप नॉन इंटरेस्टेड हैं उसकी तरफ। इसी तरह टांगे टांगों पर रख के, पता नहीं आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, टांगे पर रख के इस तरह करके आप बैठे हैं, क्लोज यानी उसमें बैठे हैं, तो इसका मतलब भी ये होता है कि आप ओपन, आप ना खुल के उसके सामने नहीं आ रहे। तो बेस्ट पोस्चर कम्युनिकेशन का ये होता है कि जो बंदा आपके साथ बैठा हो वो आपके सामने ना बैठा हो बल्कि साइड पर बैठा हो, आप क्रॉस अक्रॉस बैठे हो। क्योंकि जब आप आमने सामने बैठते हैं तो ये ज्यादा अथॉरिटेटिव किस्म का स्टांस बन जाता है, मगर जो आपके बगल में यूं बैठा होता है तो ये अमूमन अपने बच्चों से भी बात करनी हो, अपने जूनियर से बात करनी हो, तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी मेन टेबल और चेयर से हटकर साइड के ऊपर बैठें। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा आगे को झुक कर जो देखना जो है ये कम्युनिकेशन की स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। तीसरी एक बात कही जाती है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट, यानी किसी जो बात करते वक्त अगर आप फर्ज करें बात मैं इनसे कर रहा हूँ और देख मैं इधर रहा हूँ हाँ बताएं, तो उससे फिर ना कम्युनिकेशन बहुत वीक हो जाती है। तो हमें उसके चेहरे की तरफ यानी उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जिस वक्त आप गुफ्तगू कोई दूसरा कर रहा हो तो उस गुफ्तगू के अंदर अंग्रेजी में एक लफ्ज़ बोला जाता है प्रॉम्प्ट, छोटे छोटे हूँ हाँ अच्छा ये बात, ये कहने से गुफ्तगू बड़ी पावरफुल हो जाती है। एक बंदा किस्सा सुना रहा है आपको, कहानी सुना रहा है, अच्छा 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 ये बात है अच्छा, और जिस बात को हम तो इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो गुफ्तगू में अगर आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं तो उससे भी कम्युनिकेशन वीक हो जाती है, अगर आप छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स देते जाएं तो उससे गुफ्तगू जो है वो पावरफुल हो जाती है। इसी तरह बाज़ुकात ऐसा होता है कि कोई बात ऐसी आपका करने वाला जो कर रहा है और आपको यकीन नहीं आ रहा, जो कर रहा है आपको समझ में नहीं आई, या जो बात उसने की वो आपके लिए अचंभे का बायस थी, या उस बात के बारे में आप श्योर नहीं हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग, कि जो बात उसने कही है ना आप उसको अपने अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि जब आप वहां गए तो उस बंदे ने आपको डांटना शुरू कर दिया, यानी अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कह रहे, उसी बात को अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। पैराफ्रेजिंग करने से अगले बंदे को एक मौका मिल जाता है कि वो बात को दोबारा क्लैरिफाई कर सकता है, दोबारा आपको वो बात समझा सकता है। तो जहां तक स्किल्स का ताल्लुक है वो यही है कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर आदमी ओपन स्टांस के अंदर बैठे, साइड पर होकर बैठे, और उसके बाद जो है अपना गुफ्तगू के अंदर प्रॉम्प्ट्स दे और चीज़ों को पैराफ्रेज करे, यानी वो चीज़ों को दोबारा दोहराए, तो उससे समझ आने में आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन पर एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी वर्कशॉप्स हैं, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको कम्युनिकेशन के बता दिए हैं। मैं एंड में आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कैसे पता लगेगा कि हमारा किसी के साथ कम्युनिकेशन जो है ना वो कामयाब है। देखिए, सबसे अहम बात मेरे नज़दीक कम्युनिकेशन के लिए जो है ना सबसे अहम बात वो है ऑनेस्टी। आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अंदर से ईमानदार हैं, आप वाकई दिल की गहराइयों के साथ उसको समझना चाहते हैं, आप वाकई पूरी ईमानदारी से यानी जानना चाहते हैं कि ये क्या है, उसके बारे में जजमेंटल नहीं है, उससे नाराज नहीं है, उसके बारे में आपने फैसला नहीं कर लिया, उसके बारे में आपने ऑलरेडी एक माइंड नहीं पहले बनाया हुआ, प्री कंसीव्ड आइडियाज आपके नहीं है, पहले से नहीं ज़हन बनाया हुआ कि ये तो बंदा ही खराब है। ईमानदारी अगर आपके अंदर होना किसी के बारे में कम्युनिकेशन में, तो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। और आखिरी बात यह है कि कब पता लगेगा कि हमारी कम्युनिकेशन वाला सेशन जबरदस्त गुजरा है, उसकी दो बातें, जब बात खत्म हो तो दोनों बंदे कह रहे हों कि यार बड़ा मजा आया, यार आज आपके साथ जो वक्त गुजरा है ना घंटा बहुत मजा आया, अगर एंड में ये रिजल्ट निकले तो आप समझें कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रही। और दूसरी बात यह है कि हम किसी ना किसी नतीजे पर उठ के निकले इस गुफ्तगू के एंड में, चाहे ये नतीजा निकले कि भाई हम दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझा सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे समझाने की, चाहे इसी नतीजे पर भी उठें, लेकिन किसी ना किसी नतीजे पर हम निकले। दूसरा आप प्लीज याद रखिए कि कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले आपके जहन के अंदर उसकी एक आइडियल आउटकम होती है कि अब मैं जरा उसको समझाऊं ना कि आइंदा से वो ऐसा बिल्कुल ना करे। उसके बंदे उसके जहन में भी एक आइडियल किस्म की सिचुएशन होती है। प्लीज आप याद रखिए कम्युनिकेशन के एंड में 100% आइडियल सिचुएशन अचीव करना ही कामयाबी नहीं है। अगर अगला बंदा 5% भी गिव वे कर गया है और 10% भी अपनी जगह से मूव कर गया है तो फिर भी ये कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी कामयाब थी और आप अच्छे नतीजे पर। एक आदमी इस बात ही तैयार हो गया है कि जो बात आपने कही है मैं इंशाल्लाह इस पर गौर करूंगा, चाहे उसने अपना रवैये को नहीं भी बदला फिर भी हमारी ये कम्युनिकेशन जो है वो कामयाब रही है। दूसरा प्लीज याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन इज नॉट अ वन टाइम जॉब, कम्युनिकेशन इज नॉट अ रेवोल्यूशन, ये इनकलाब नहीं होता। मैं गल करांगा तो आइंदा तो वो फिर बंदे का पुत्र बन जाएगा, इनकलाब नहीं होता ये। कम्युनिकेशन एक एवोल्यूशन होती है, ये बतदरीज अमल होता है। दिस इज लाइक मैच्योरेशन, एजिंग की तरह का मसला होता है, जैसे एजिंग स्लो 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 स्लो। तो अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आपने थोड़ा सा मैदान हासिल किया है और उसके बाद आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है।